आरव आयु को उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ज्ञानजी के फार्म हाउस ले जाना चाहता था। आयु वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी आरव के जिद करने पर उसे मानना ही पड़ा। अपनी रूम से तैयार होने के बाद आयु आरव के स्वीट में पहुंची। वहां जाकर वो आरव से बात कर रही थी, तभी उसने देखा आरव के मोबाइल पर माहिरा का कॉल आ रहा था। उसका कॉल देखते ही आयु के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो भागकर अपने कमरे में आ गई। आयु अपने स्वीट की तरफ आ रही थी, तब ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो गई थीं जिसके बारे में उसने आरव को नहीं बताया था। 3.5 साल पहले आयु आरिशा के साथ फ़ैज़ के यहाँ से वापस लौट रही थी। फ़ैज़ उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया था। आयु सिक्योरिटी चेकआउट के लिए जा रही थी, तभी फ़ैज़ ने उसे रोकते हुए कहा, सुनिए मिसेस खुराना, आपसे कुछ कहना था। फ़ैज़ की आवाज़ सुनकर आयु उसकी तरफ पलटी और सवालिया नज़रों से फ़ैज़ की तरफ देखने लगी। दिल ही दिल में उसे डर लग रहा था कि कहीं फ़ैज़ अपना इरादा बदल ना ले। फ़ैज़ ने धीमी आवाज़ में कहा, हम जानते हैं कि आप आरव खुराना के पास वापस नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी किस्मत आपको कभी आमने सामने लाकर खड़ा भी कर दे तो माहिरा लूथरा से बचकर रहिएगा। मुझे उससे बच के रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आरव के पास नहीं जाऊंगी। वैसे भी आरव जैसा भी हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में मेरी जगह उसे कभी नहीं देगा, आयु ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसका आरव पर इतना विश्वास देखकर फ़ैज़ के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसी अंदाज में बोला, अगर उन पर इतना ही यकीन है तो उन्हीं के पास चली जाइए, बाकी अवेयर करना हमारा काम था। आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन माहिरा लूथरा आरव खुराना की ज़िंदगी में गहराई तक समाई हुई है। प्यार ना हो, लेकिन यकीन है, प्यार से ज़्यादा यकीन मायने रखता है, जो आपके बजाय उन पर है। हमें लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में कोमा में थीं, तब उन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी और हमने ही आपको बचाया था। हम कभी उसका साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो हमारा साथ चाहती थी। उसका एक ही मकसद था, आपको आरव की ज़िंदगी से हटाना। मुबारक हो, तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए, आयु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, क्या मेरे बच्चों को किडनैप करने में उसने तुम्हारा साथ दिया था? पूरी तरह से तो नहीं, फ़ैज़ ने जवाब में कहा, लेकिन फिर भी आपको कब होश आया या किस पल आप क्या कर रही थीं, आपके घर में क्या चल रहा था, उसकी अपडेट मुझे माहिरा के ज़रिए ही मिलती थी। वो घायल शेरनी है और वार करने से पीछे नहीं हटेगी। हमें हैरानी हो रही है कि आप अब तक उससे बची हुई कैसे हैं। आपकी बहन को उसने होटल के टेरेस से धकेला था, जैसे कि आरव ने अनजाने में अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था। हमने भी वो वीडियो देखा था। आखिरी वक्त में आपकी बहन आरव के काफ़ी करीब थी, और उसका क्या हश्र हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो आरव के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पागलपन की आखिरी हद तक भी, तो बच के रहिएगा उससे। फ़ैज़ ने अपनी तरफ से आयु को अवेयर कर दिया था। पहले आयु ने आरव के पास आने का नहीं सोचा था, इसलिए उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज किस्मत जब आरव और उसे वापस एक साथ ले आई थी, तब ना चाहते हुए भी आयु के दिमाग में फ़ैज़ की बातें गूंज रही थीं। आयु वहां खड़ी फ़ैज़ के बारे में सोच रही थी कि तभी आरव उसके पास पहुंचा। आयु के चेहरे पर परेशानी देखकर आरव ने पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक दौड़कर क्यों आई? मैंने तुम्हारे कपड़ों पर कॉमेंट किया, इस वजह से तुम नाराज तो नहीं हो गई ना? आयु ने बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे पूछा, आरव, माहिरा तुम्हारे नंबर पर क्यों कॉल कर रही थी? क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? आरव को लगा आयु को जलन हो रही है, इसलिए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने उसी अंदाज में कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो। मैंने तुम्हारे उस सो कॉल्ड डॉक्टर के बारे में पूछा, तो तुम बीच में माही को ले आई, आरव ने आइज रोल करके कहा। कम ऑन, तुम जानती तो हो माही और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। मैं माफिया के लिए काम नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे माहिरा से कनेक्ट रहना पड़ता है। बाकी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। आयु डायरेक्टली आरव को कुछ नहीं बताना चाहती थी। फ़ैज़ ने उसे यही कहा था कि आरव को माहिरा पर बहुत यकीन है, इसलिए उसने इनडायरेक्टली कहा, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसके साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दो। तुमने उस वक्त बताया था कि उसी ने मेरी बहन को वहाँ से पुश किया था। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कल को वो मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश करेगी या मेरी, तब तुम क्या करोगे? देखो, फिलहाल मुझे तुम्हारे अंदर एक जेलस वाइफ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं माहिरा के साथ अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म नहीं कर सकता। रही बात तुम्हारी और बच्चों की, तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे तुम सबको सेफ रखना है। मेरे होते वो तुम पर वार नहीं करेगी, अब तक नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगी, आरव ने जवाब दिया। अब आयु को फ़ैज़ की बातें समझ आ रही थीं, जब उसने कहा था कि माहिरा आरव की लाइफ में गहराई तक समाई है। आयु अपने बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने इस बार बात को छुपाए बिना सीधे तौर पर कहा, और क्या हो जो उसने पास्ट में मेरे या मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया हो, ज़रूरी नहीं कि तुम एनी टाइम हमारे आसपास रहो। अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मैं माहिरा को तुमसे बेहतर जानता हूँ। अगर वो कुछ करेगी तो खुलेआम करेगी। ऐसे छुपकर काम करना उसकी फितरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो तुम बीच में माहिरा को क्यों लेकर आ रही हो? आरव ने इस बार गुस्से में तेज आवाज में कहा। आरव और आयु आपस में बहस कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि आर्य और आरिशा दरवाजे पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। आर्य ने धीरे से आरिशा से कहा, तो हमारे मॉम डैड भी झगड़ा करते हैं, शायद तभी दोनों साथ में नहीं रहते। जरूर पहले डैड ने ही गुस्सा किया होगा, मॉम ऐसी नहीं है, आरिशा ने जवाब दिया। आयु कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर आरिशा और आर्य पर गई। उसने आरव को चुप रहने का इशारा किया और फिर दरवाजे की तरफ देखकर कहा, हम बस बात कर रहे थे। इसे बात करना तो नहीं कह सकते, आप दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, आरिशा ने कंधे उठाकर कहा। आरव ने तुरंत नामे सिर हिलाया और आरिशा से कहा, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, चलो हम तुम्हारे नानू के फार्म हाउस चलते हैं और आगे से हम तेज आवाज में बात नहीं करेंगे। बोलते हुए आरव ने आरिशा को गोद में उठा लिया। फिर उसने सिर टेढ़ा करके आयु की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। आयु का मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था, फिर भी वो बच्चों के सामने रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। उसने आर्य को अपनी गोद में लिया और आरव के पीछे पीछे गाड़ी की तरफ आ रही थी। दोनों बच्चे बैक सीट पर बैठे थे। आयु ने उन दोनों के ही कान में एयरपोड्स लगा दिए थे और हाथ में मोबाइल थमा दिया था ताकि वो उनकी बातें ना सुन सके। उसके बाद आयु ने आरव की तरफ देखकर कहा, सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा कि अब हम दोनों के साथ हमारे बच्चे भी हैं, तो तुम मुझसे चिल्लाकर बात नहीं करोगे। और कभी अपनी तरफ देखा है, जब देखो गुस्से में ही रहती हो, तुम भी मुझसे प्यार से बात करोगी और माहिरा हमारे बीच में कभी नहीं आएगी, तो बेवजह उसे मत घसीटो। आगे से मुझे तुम्हारे मुंह पर उसका नाम नहीं सुनना है, आरव ने ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया।
कुछ ही देर में वो ज्ञान जी के फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे और अब आयु को अपने मॉम डैड से मिलना था। आरव गाड़ी से बाहर निकला और आयु की तरफ आकर दरवाजा खोला, लेकिन आयु बाहर जाने के बजाय अभी भी अंदर ही बैठी थी। आरव ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया तो आयु ने ना में सिर हिला दिया था। आरव आयु को लेकर ज्ञान जी के फार्म हाउस आया था, उसकी वजह से आयु के मॉम डैड और उसका रिश्ता बिगड़ गया था। अब आरव सब कुछ सही करना चाहता था। आरव गाड़ी से बाहर निकला, उसने आयु को बाहर आने का इशारा किया, लेकिन आयु अभी भी अंदर ही बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आयु की जिद करने पर आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा बाहर निकलो मिसेस खुराना, वरना मुझे जबरदस्ती उठाकर अंदर ले जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, तुम्हें सब सही करना है तो तुम अकेले चले जाओ, वैसे भी बच्चों के सामने बेवजह तमाशा होगा तो फिर ये भी 100 सवाल पूछेंगे। देखा नहीं, हमारी थोड़ी सी बात सुनने के बाद भी उन्हें ये डाउट हो गया था कि हम झगड़ा कर रहे हैं। अंदर सब मुझ पर गुस्सा करेंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, आयु ने लाचारी से आरव की तरफ देखकर कहा। कुछ नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ 4 साल के बच्चे हैं। अगर तुम्हें इतना ही डर है कि दोनों बच्चों के सामने वो सब तुम पर चिल्लाएंगे, तो हम फिलहाल के लिए बच्चों को गाड़ी में छोड़ देते हैं, आरव ने कंधे उठाकर कहा। आरव के इस आइडिया पर आयु ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं पीछे से किसी ने उन दोनों को किडनैप कर लिया तो। पास्ट में जो भी हुआ था, आयु के दिल में अभी भी उसे लेकर डर बैठा हुआ था। आयु आरव की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सिर पकड़कर कहा, ठीक है फिर बैठी रहो यहीं पर, मैं दोनों बच्चों को लेकर अंदर जा रहा हूँ। तुम्हारी एब्सेंस में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, हो सकता है उसके बाद वो तुमसे और नाराज हो जाए, फिर मुझे मत कहना कि यहाँ भी मैंने रायता फैला दिया। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया और फिर बैक सीट की तरफ जाकर आरिशा और आर्या को बाहर निकालने लगा। आयु ने मुंह बनाकर कहा, हद दे यार, इसे हर बात पर ब्लैकमेल क्यों करना होता है। मजबूरन आयु को गाड़ी से बाहर आना ही पड़ा। अंदर जाते हुए आयु के कदम भारी हो रहे थे तो आरव ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसकी तरफ ईविल स्माइल करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसी बात की तो चिंता होती है, जब तुम मेरे साथ होते हो तब सब गड़बड़ हो जाता है, आयु ने आरव को पीछी निगाहों से देखते हुए कहा। आरव और आयु अंदर गए। पूरी ओबेरॉय फैमिली इस वक्त बाहर गार्डन एरिया में लगे डाइनिंग टेबल पर थी और साथ में ब्रेकफास्ट कर रही थी। आयु को वहां देखकर ज्ञान जी, रुद्र और सिमरन के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, तो वहीं तारा और जय जी के चेहरे के भाव सख्त हो गए। तभी उनकी नजर आयु की गोद पर गई, उसने आरिशा को गोद में उठा रखा था। आरिशा की तरफ देखकर तारा जी ने हैरानी से आयु से पूछा, ये बच्ची तुम्हारी है? आयु ने हां में सिर हिला दिया। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो आरव ने कहा, ये हमारी बेटी है, आयु की वजह से किसी भी बच्चे की जान नहीं गई और आज मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं, तो प्लीज अब आप इसे माफ कर दीजिए। तारा ने सख्ती से आरव की तरफ देखकर कहा, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदा हैं, लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वो भी इसकी वजह से। तुम इसे माफ कर सकते हो लेकिन हम नहीं, तो जिस रास्ते से ये यहाँ पर चलकर आई है उसी रास्ते से यहाँ से चली जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आयु ने गुस्से से आरव की तरफ देखा। उसके मना करने के बावजूद आरव उसे जबरदस्ती वहां लेकर आ गया था। आयु वहां से जाने को हुई तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं तारा के गुस्सा करने पर रुद्र ने कहा, मॉम कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। हाँ अनजाने में इसने मेरी बेटी की जान ले ली, तारा ने तेज आवाज में कहा। वो गुस्से में अपना आपा खो रही थी तो जय जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहलाया और फिर आयु की तरफ देखकर कहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ पर आ गई? अब तक हमसे दूर थी तो हमारी फैमिली में खुशियों का माहौल था और अब तुम्हारे कदम रखते ही यहाँ पर मनहूसियत छा गई है। अपनी बहन का ख्याल तो नहीं किया, अब अपनी माँ का ख्याल तो कर लो। यही सोच लो कि तुम्हारी शक्ल देखकर उसकी तबीयत खराब हो रही है तो चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? प्लीज मम्मी जी डैडी जी माफ कर दीजिए ना आयु को, उसने जानबूझकर नहीं किया था, ये एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता था, सिमरन ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान जी बोले, एक बेटी को खो दिया है तो क्या दूसरी को भी खोना चाहते हो? ये मेरे साथ रहती थी और मुझे अच्छे से पता है कि कितने दर्द में जी रही थी ये। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, इसे कहिए ये यहाँ से चली जाए या फिर मैं ही चली जाती हूँ, तारा ने चिल्लाकर कहा। वो आयु के साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो कोई अनजान हो। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने आंसुओं को कंट्रोल में करके कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ। कहकर आयु जाने के लिए दूसरी तरफ पड़ती तो उसके कानों में तारा की आवाज पड़ी जो आरव से कह रही थी, मैं तो कहती हूँ तुम भी इस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लो, किस्मत वाले हो जो दोनों बच्चे बच गए, लेकिन देखना साथ रही तो जरूर कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे फिर से दोनों बच्चों की जान पर बनाएगी। तारा की कड़वी बातें सुनकर आयु की आंखों में जो आंसू कैद था वो बह गया। उसकी आंखों के सामने अनु का चेहरा घूम रहा था जब वो ऑपरेशन थिएटर में थी। आयु को अब तक याद नहीं आ रहा था कि उससे कहां और कब गलती हो गई जिसकी वजह से अनु की जान गई थी।